भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु के हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल वे सयाने पूजूनी सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
उन्होंने परम पूज मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की पूज मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की।
हम सभी लोग पिछले कई दिनों से निरंतर अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं इस बात पे विचार कर रहे हैं। हमने अलग अलग तरह से अपने जीवन में झांक करके देखा है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग दृष्टिकोण से अपने जीवन को हम देखें तो हम पाते हैं कि सचमुच हमारी अपनी किसी कमजोरी से, हमारी अपनी अज्ञानता से हमने अपने जीवन को जैसा हमारा जीवन है वैसा बना लिया है। वास्तव में जैसा जीवन हमारा होना चाहिए वो नहीं है ये जो जीवन हम जी रहे हैं, पर इतना जरूर है कि हमारे भीतर संभावनाएं अनंत हैं। यदि हम उन संभावनाओं को विकसित करें, उनको अपने भीतर प्रकट होने का अवसर दें, तो हम जैसा अपने जीवन को बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। जैसा हम बन गया है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, जैसा हम बनाना चाहते हैं उसके लिए पुरुषार्थ जागृत करना यह भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। यदि हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं तो यह हमारी अपनी पुरुषार्थहीनता है, हमारा सर्कमस्टेंसेस या कि हमारे भीतर बंधे हुए कर्म वे हमें बाध्य कर सकते हैं, लेकिन हम उस बाध्यता से अगर प्रभावित हो जाते हैं तब तो हमारा पुरुषार्थ समाप्ति हो जाता है। यदि हम उन तमाम बाधाओं के बावजूद भी अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाने का तय कर लें, ऑल ऑफ सडन नहीं, तुरंत के तुरंत नहीं भी, पर एक समय के बाद हम देखेंगे कि हमारा जीवन ठीक वैसे ही बन गया है जैसा हमने चाहा था। जबकि जब हमने चाहा था तो हमारा जीवन कहीं से नहीं लगता था कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो सकता है। जैसे कि एक बटके बीज को कोई हाथ में रख करके ये कल्पना करे कि कितना बड़ा होगा उसका पेड़, इमेजिनेशन करे तो घबरा जाएगा वो कि इतना छोटा सा बीज और इसके भीतर इतना बड़ा बड़ का पेड़ क्यों बुद्धू बनाते हो, संभव ही नहीं। लेकिन जो वही बड़ का बीज और जमीन पा लेता है और अपनी जड़ें जमाना शुरू कर देता है तब आकाश में फैल करके इतना बड़ा हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते। ऐसा ही हमारा जीवन है, हम अगर जो है भावनाओं की जमीन पा जाएं और उस जमीन के अंदर से बाहर अपने अज्ञानता की परतों को तोड़ करके और सच्चाई के प्रकाश में आ जाएं, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपना विकास न कर पाए, हम अपना विस्तार न कर पाए। इन सब चीजों के देखते हुए और हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि जितना कंसंट्रेशन हमारा अपने सर्कमस्टेंस पर है, जितना कंसंट्रेशन हमारा अपने शरीर को लेकर के है, जितना हमारा आग्रह अपने संबंधों को लेकर है, उतना हमारी अपनी चेतना के प्रति नहीं है। जितना हम शरीर की सेवा शुश्रूषा और उसका ध्यान रखते हैं, ठीक भी है, उससे हमारा काम चलता है। शरीर अगर रुग्ण हो तो रुग्ण शरीर से हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते, वो बाधा डालेगा उसमें, इसलिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन शरीर के स्वस्थ होने के बाद भी यदि मैं उस शरीर में आशक्त हो जाऊं, तब तो वो मेरा स्वास्थ्य मेरे अपने कल्याण में कारण नहीं बनेगा, फिर वो मेरे अकल्याण में कारण बनेगा। इसलिए मुझे सावधानी रखनी है शरीर के साथ, कि जब मैं शरीर के स्वास्थ्य की चिंता करता हूं तो चिंता वहीं तक ठीक है जब तक कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं हुआ है। जैसे ही मेरा शरीर स्वस्थ हो, या जिनका शरीर स्वस्थ है उनके पास इस तरह का कोई विचार आवश्यक नहीं है शरीर को स्वस्थ करने का। अब दूसरा विचार भी तो होना चाहिए कि स्वस्थ शरीर से मैं क्या अपने जीवन को स्वस्थ बना सकता हूं, मैं अपने मन को स्वस्थ बना सकता हूं। कितने सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कितने सारे डॉक्टर रोज हम मेट कर रहे हैं, रोज हम बना रहे हैं सारे देश में, वे सब हमारे शरीर को स्वस्थ करके हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम अपना आत्मा का कल्याण करें, लेकिन हम स्वस्थ शरीर पाकर के उस स्वस्थ शरीर में आशक्त हो जाते हैं। हमारी अपनी मानसिक कमजोरी यही है। अगर इस मानसिक कमजोरी को दूर करके और स्वस्थ मन को हम प्राप्त कर ले तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने जीवन का विकास न कर ले। जरा सा अपन आज विचार करें कि जैसे स्वस्थ शरीर जरूरी है, क्या ऐसा ही स्वस्थ मन जरूरी नहीं है? स्वस्थ मानसिकता भी जरूरी है, लेकिन स्वस्थ मानसिकता के मायने क्या है? अपन अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। अपने पास अभी मेरे ख्याल से 18 नवंबर देखो कितनी जल्दी खिसक गया। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन करें अगर, तो बस आया आया समय, ये अगस्त अक्टूबर आ गया है। इतने समय में भी हमारे पास बहुत कुछ समय है, हम अलग अलग ढंग से अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विचार कर सकते हैं। हम अपने मन को स्वस्थ बना सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के मायने क्या है? पहली चीज, वो व्यक्ति स्वस्थ है मन से जिसका सुख दूसरे के दुख पर नहीं टिका है, जिसका सुख किसी इंद्रिय सामग्री पर नहीं टिका है, जिसका सुख अपनी ही आत्मा की निर्मलता पर टिका हुआ है, वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसका मन स्वस्थ है। और हम लोगों का अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हमारा सारा सुख दूसरे के दुख पर टिका हुआ है। एकदम समझ में ना आएगी बात, भली भी नहीं मालूम पड़ेगी कि ऐसा कहां, लेकिन जरा गौर से देखें, बहुत थोड़े से लोग हैं यहां पर जो दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। वे कहीं मिल जाएं तो माथा रख देना उनके चरणों में, वैसे भले लोग संसार में 1% मिलेंगे जो दूसरे के दुख से दुखी हैं। और ऐसा दूसरा जो उनका नहीं है, ऐसा दूसरा जो हमारा है जिसके साथ हमारा कोई संबंध है, उसके प्रति दुखी होना बहुत नेचुरल है। लेकिन जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध और संपर्क तक नहीं है, उसके दुख से भी हम दुखी हो जाते हैं, तब ऐसे लोग तो बहुत थोड़े से, बहुत प्यारे लोग हैं इस तरह के लोग, तो इनको तो कहीं लालटेन लेकर के दिन के प्रकाश में भी ढूंढने जाएं तो बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, दूसरे किस्म के लोग हैं जो अपने दुख से दुखी हैं, ऐसे लोग हर एक कदम आगे बढ़ेंगे और मिल जाएंगे। अभी अपन शुरू करें, अगर इसी सभा में शुरू करें, एक व्यक्ति सामने वाला खड़ा हो और अगले वाले के पास से गुजरे, उसके दुख की खबर उसको लग जाएगी। हाँ, लग जाएगी। हर आदमी यहां पर अपने दुख से दुखी है, वो कहता नहीं है। रास्ते में अगर कोई मिलता है और अपन उससे पूछे कि क्यों, कैसे हो, ठीक है, बस ठीक है, चल रहा है, मतलब काम चल रहा है, इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा अगर ज्यादा उससे पूछोगे तो फिर वो कहेगा, यार अब तुम्हें तो मालूम है, हमारी स्थिति मालूम है, सब तुम्हारा देखा जाना हुआ है, अब और तो सब ठीक है, लेकिन अब हमारे अपने घर में ही बड़ी कलह हो जाती, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के ट्यूनिंग नहीं बैठती है, वो बेटा भी ढंग का नहीं निकला, और भी बहुत सारी बात, अब फिर कभी बताएंगे, अभी तो ठीक, अच्छा चलें, चलते हैं, हो गया वार्तालाप, हो गया 5 मिनट का। आप किसी से भी मिल लीजिएगा, हर आदमी अपना दुख प्रकट करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है कि मैं इस जगह दुखी हूं। अपने दुख से दुखी यहां कोई नहीं होगा जो ना हो, लेकिन तीसरे तरह के लोग और बहुत मजेदार लोग हैं। ऐसे लोगों की तादाद भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, पहले भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि आज ही है, ऐसे लोग हमेशा से रहते हैं। तीसरे तरह के, जो कि दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरा क्यों सुखी है? हां, ऐसे लोग भी मेजॉरिटी में हैं। दूसरे का सब अच्छा क्यों चल रहा है? अरे बेईमानी है उसकी, सब ऐसा भाव आएगा, अच्छे से चल रहा है तो उसकी योग्यता है, ऐसा नहीं, सब बेईमानी है, सब करप्शन है, ऐसा कहेंगे। हम दूसरे के सुख को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमारी पीड़ा का सबसे बड़ा कारण है कि हम दूसरे के सुख से दुखी हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में कह लीजिएगा कि हमारा सुख भी दूसरे के दुख पर डिपेंड करता है। जो दूसरे के सुख से दुखी है, वो दूसरे को दुखी देख करके हमेशा मजा लेता है। हम भी जब दूसरे से पूछते हैं कि क्यों, कैसे हो, तो जब वो पहली बार कहता है कि सब ठीक है, तो उसे ऐसा विश्वास नहीं होता, फिर धीरे से कि क्यों, और उसका क्या हुआ, वो जो तुम्हारे साथ वो एक प्रॉब्लम थी उसका, अरे यार वो तो ज्यों की त्यों चल रही, हाँ ठीक है, तो फिर वापिस लौट रहे हैं। मैंने कोई अब बड़ा सुख लग रहा, पहले नहीं लग रहा, जब उसने कहा कि सब ठीक है तो ऐसा लगा कि हम ही दुखी हैं। दूसरा अपना कोई सुख बताने लगे तो अपन को लगता है कितना सचमुच सुखी है ये, अपन बहुत तकलीफ में है। दूसरे के सुख देख करके अपनी तकलीफ का एहसास होने लगता है, और दूसरे का दुख देख करके अपन फिर भी ठीक है यार जी, तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है क्या? पहले जब हमने कहा था, जब तो बहुत मुश्किल लग रही थी कि कहां हमारा सुख दूसरे पर टिका हुआ है, टिका ही हुआ है, देख लो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सुखी हैं तो सावधान रहिएगा, दुनिया आपसे ईर्ष्या करेगी, अगर आप दुखी हैं तो शांति से जीते रहिएगा, सबकी सिंपैथी लूटिएगा, सब आपके प्रति सहानुभूति, बस आप दुखी बने रहिएगा, सबकी सहानुभूति मिलेगी, आप जिस दिन सुखी हो जाएंगे उस दिन मुश्किल खड़ी कर लेंगे अपने लिए अपने हाथ से, हां उस दिन सारे लोग ईर्ष्या करेंगे, कोई आपको ठीक से नहीं देखेगा, कोई आपकी तवज्जो नहीं करेगा, कोई ध्यान तक नहीं देगा, हां होंगे साथ, आप दुखी रहिए हमेशा अगर दूसरे की सहानुभूति चाहते हैं। ऐसा जमाना है, ऐसे हम इतने इतने बढ़िया किस्म के लोग, प्यारे किस्म के नहीं कह रहा हूं, इतने बढ़िया किस्म के लोग। हम जरा विचार करें, गौर से अपने भीतर झांक करके देखें कि क्या सचमुच ये स्वस्थ मानसिकता है, क्या मेरा मन वाकई स्वस्थ है? नहीं, मेरा मन अगर ऐसा है कि मेरा सुख दूसरे पर निर्भर है, दूसरे की तकलीफ पर मेरा सुख निर्भर है, तो ये मेरी स्वस्थ मानसिकता नहीं है। स्वस्थ मानसिकता तो वो है जबकि हम अपने दुख से दुखी ना होकर के अपने दुख को कम देखते हैं, दूसरे के दुख को दुख ज्यादा समझ करके और उसके दुख में उसकी मदद करने तैयार खड़े हो जाते हैं। जब हमें दूसरे का दुख अपना लगने लगता है, उससे हमें सुख नहीं मिलता, उससे हमें अपना दुख जैसा मालूम पड़ने लगता है, तब समझेंगे कि हमारी स्वस्थ मानसिकता है। वर्णी जी के जीवन की आपको घटना सुनाऊं, ऐसे प्यारे लोग हुए हैं जिनकी स्वस्थ मानसिकता थी। अस्वस्थ मानसिकता हम सबकी है, क्या करें, हम हमेशा दूसरे के सुखों को बड़ा करके देखते हैं और अपने दुखों को बड़ा करके देखते हैं, दूसरे के दुखों को कम और अपने सुखों को कम करके देखते हैं। अपने कम और ज्यादा का जो देखने का ढंग है वो भी बड़ा मजे का है। अपना दुख ज्यादा करके देखना, दूसरे का दुख छोटा करके देखना, अपना सुख छोटा करके देखना, दूसरे का सुख बड़ा करके देखना, ये इसी तरह चलता रहता अगर गौर से। मैंने तो आपको शब्दों में कह दिया, आप अगर थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके सब लोग अपन सब देखें तो ऐसा नहीं लगता, कई अधिकांश अवसर पर हमें ऐसा ही लगता है कि हम ऐसे ही जी रहे हैं। ये हमारी स्वस्थ मानसिकता नहीं है, हमें अपनी मानसिकता स्वस्थ कर लेनी चाहिए, हमें अपने मन के स्वास्थ्य का अब ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं अस्वस्थता का अनुभव कर रहा हूं, ऐसे ही हम भगवान के पास आकर के महसूस करें कि वास्तव में स्वस्थ तो ये है, मैं तो फिर भी अस्वस्थ हूं, मैं मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ हूं। मैं उस समय भगवान के सामने आकर, मैं गुरुजनों के निकट आकर के, मैं जिनवाणी के स्वाध्याय करते समय ये महसूस करूं कि मेरी मानसिकता स्वस्थ नहीं है, मैं बहुत अस्वस्थ मानसिकता रखता हूं, क्योंकि मेरा सारा सुख दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे के दुख पर निर्भर है। एक स्वस्थ मानसिकता का वर्णी जी का उदाहरण मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि शायद हमारे अंदर वैसी ही मानसिकता बने। क्या हुआ, वो ये ललित दलपतपुर से 13 किलोमीटर नैनागिर जाते हैं, जब बंडा से दलपतपुर, दलपतपुर से नैनागिर, कई लोग गए होंगे बुंदेलखंड की यात्रा पर निकले होंगे तो वहां नैनागिर सिद्ध क्षेत्र, पारसनाथ भगवान का समोशरण वहां आया था, तो वहां जा रहे थे। बहुत पुरानी बात, उस समय बसेस के साधन बहुत कम थे तो तांगे से जाना पड़ता, तांगा इक्का जिसको बोलते हैं, घोड़ा जिसमें लगा रहता, तो उसमें बैठे, उसमें बैठे तो अकेले वर्णी जी थे, उन्होंने कहा चलो भाई ले चलते हैं पूरा तांगा, अब वर्णी जी को ले जाना है। वो नहीं जानता है कि ये वर्णी जी है तांगे वाला को सवारी रखती, वो तो सवारी बिठा ली उसने और चल दिया। उतने में ही जो है किसी ने कहा रोको रोको, तो तांगे वाले को चूंकि पूरा तांगा वर्णी जी ने कर लिया था इसलिए उसने नहीं रोका, तो वर्णी जी कहने लगे भैया ये दो जने और आ रहे हैं, सुई जा चलो चाहत हरिगन लो, आपने तो पूरा तांगा करो, पैसा आप पूरे दे, उनको काय को बिठा रहे, अरे नहीं बिठा लो भी कहां भटकत फेरे होते, बिठा लिया उनको, दो लोगों को बिठा लिया। बहुत कठिन है ऐसा करना, अपन ने पूरा पूरा स्कूटर कर लिया, अपन ने पूरा ऑटो कर लिया और उसमें जी दोनों कहां से आए, देखो जरा गौर से अपने भीतर झांक करके, मैं वाणी में अकेला नहीं कह रहा हूं, गौर से झांक करके देखना भीतर थोड़ा सा कि ऐसे ही तो है, पूरी हमारी कार में हम अकेले चले जाएंगे लेकिन रास्ते में पैदल चलते हुए किसी से कभी कार में से सिर बाहर निकाल के पूछते हैं कि वेलकम कहां तक छोड़ दूं आपको, पूरी कार खाली है, नहीं मेरी कार खाली जा सकती लेकिन इन टुटपुंजी लोगों को, अरे इनको नहीं बिठाते हम बड़े आदमी। हाँ ऐसे ही भाव आता है, ये है अपनी मानसिकता, जरा विचार करिएगा। बाकी धर्म वर्म की मुझे चर्चा बहुत नहीं करनी, यही धर्म पूरा पाल लें हम अगर, स्वस्थ मन से ही कोई धर्मात्मा हो सकता है, अस्वस्थ मानसिकता वाला धर्म की क्रियाएं दोहरा सकता है धर्मात्मा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जिसकी मानसिकता स्वस्थ है वो बिना धर्म किए भी, धर्म की क्रियाएं दोहराए बिना भी धार्मिक कहलाएगा, और जो सिर्फ धर्म की क्रियाएं दोहराता है और जिसकी मानसिकता वही है, थोड़ा सा गौर करिएगा। बैठ गए वो दोनों और अब दोनों ने जल्दी मचाई, वर्णी जी को तो शांति से बैठे थे, उन दोनों ने कहा तांगे वाले से, देखना उनकी अपनी मानसिकता, जो लोग बैठे हैं और वर्णी जी की मानसिकता, उनने प्रेम से उनको बिठा लिया लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि जैसे ही हम तांगे के मालिक हैं, ए तांगे वाले जल्दी चलाओ, थोड़ा पहुंचना है जल्दी, फिर वापस भी लौटना है। तांगे वाले ने कहा कि चलाता हूं, वो अपने अपने हिसाब से चला रहा है, पशु को तकलीफ ना पहुंचे, उसकी मानसिकता है वो प्रेम से, ए बेटे चलो, ए बेटे चलो, तांगे वाले अपने अपने घोड़े को कह रहा है, ए बेटे हाँ चलो, ऊंचा नीचा रास्ता है, कोई रोड तो बनी नहीं थी, धूल धक्कड़ है बहुत, बचा बचा करके धूल में से ले जा रहा, क्यों? अब अचानक क्या हुआ कि एक बहुत धूल भरा रास्ता आ गया थोड़ी दूर का, तो उस तांगे वाले ने बाजू में से कट करके तेजी से तांगा निकाला। तो वो दोनों कहते हैं कि जब हम कह रहे थे तब तुम तांगा धीरे धीरे चला रहे थे और अब जो है जल्दी चला रहे हो, क्या कारण है, क्या हुआ था इसके पहले जब वे दोनों लोग नहीं आए थे, जब अकेले वर्णी जी थे? तब मालूम चार पैसे तो देंगे ही तांगे के, लेकिन वर्णी जी चार पेड़े रखे थे अपने पास, पीड़ा काहे के मां बा के रखे थे चार। अब उनको ख्याल आ गया कि अपन दो पीड़ा तो एक हो देवी में, एक हो कभी पीड़ा मिला थे, अपन तो ते जाके अपने दुखे हैं, फिर बाद में होते पहुंचे भूल गए, अब इन दे दू। सोन ने चार पैसे तो दिए ही और उस तांगे वाले को, देखो भैया तुम तो अच्छे से ले चलियो, हमारे तो जी धरे हैं सोते, हम तो हाथ मुंह धो के फिर के हैं, तुम तो खाद चलो और चले चलो अच्छे से। सोन को दो पेड़े दिए थे उस बड़नी जी ने। अपन किसी के ऑटो रिक्शे में बैठते हैं और अगर वो ये कहे कि साहब एक चाय पी लूं, पैसे पूरे लिए हैं, हमारे समय पर पहुंचना चाहिए, यही ना? लेकिन वर्णी जी कह रहे हैं कि तुम तो आराम से खाते हुए चलो, दिन भर हो गई हुए, तुम्हें थक गए हुई हो और खा लो। अब जब वो लोग कहते हैं कि तुम इधर से इतने टर्न करके ले गए और तेजी से निकाला जो हमने कहा था जब नहीं ले गए थे, तो मालूम उस तांगे वाले ने क्या कहा कि वो जो बाबूजी, वर्णी जी को बाबूजी कह रहा है वो, कि वो जो बाबूजी बैठे हैं उनको धूल में तकलीफ होती है, इसलिए हम यहां इस रास्ते से जल्दी से निकाल के ले आए। अरे आप इनका इतना ध्यान रख रहे हैं, क्या हमने पैसे नहीं दिए हैं? कहते पैसा तो तुमने भी दाए हैं, वो दे हो मनो दो पीड़ा उनने दाए हैं, भी तुमने नहीं दाए। इसको क्या कहेंगे? मुझे तो एक उदाहरण आपको सुनाया, ये है स्वस्थ मानसिकता जो दूसरे की भी मानसिकता को बदल देती है, दूसरे की मानसिकता को भी स्वस्थ कर देती है। और हम अगर अस्वस्थ मानसिकता से ग्रस्त हैं तो दूसरा भी उसी मानसिकता को अपने जीवन में आपके सामने प्रकट करेगा। यूनिवर्स इज ए मिरर इन विच आई सी व्हाट आई एम, ये सारा संसार एक दर्पण है जिसमें हम चाहें तो देख लें कि हम क्या हैं। जैसे हम होते हैं वैसा सारा संसार दिखता है। अगर हमारी स्वस्थ मानसिकता है तो सारे संसार में स्वस्थ मानसिकता के लोग दिखेंगे, और हमारे भीतर अगर अस्वस्थ मानसिकता है तो सब वैसे ही दिखाई पड़ेगा। देख लो, व्यवहार ही वैसा होता है। तो हमने पहली चीज ये सीख ली कि अपनी मानसिकता स्वस्थ बनाने के लिए हमें हमेशा दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, उसका भी सुख दुख होता है। और सुख तो अपनी अपनी जगह सब जी लेते हैं, लेकिन किसी के दुख में खड़े हो जाना, उसके साथ किसी के दुख को महसूस कर देना, ये हमारे भीतर मानसिकता बननी चाहिए। और दूसरी चीज वो स्वस्थ मानसिकता है जो जल्दी से एडजस्ट कर लेती, जितने जल्दी हम परिस्थितियों से समायोजन कर लेंगे उतनी हमारी स्वस्थ मानसिकता कहलाए। अब जरा गौर से देखें, हमारी अपनी मानसिकता स्वस्थ बनाने के लिए हम समायोजन कैसे कर लेते हैं, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट दो अलग शब्द हैं इंग्लिश में, लेकिन दोनों का हिंदी समायोजन ही है, लेकिन दोनों के मायने अलग अलग हैं। जैसे कि दो लोग हैं, उनके पास कोई चीज है, वो चीज दोनों को चाहिए, तो दोनों कॉम्प्रोमाइज करें उस चीज को लेके कि थोड़ी देर आप ले लें, थोड़ी देर मैं उपयोग कर लूं, क्योंकि एक ही चीज है, हम दोनों को उपयोग करना, ये कहलाएगा कॉम्प्रोमाइज। और दोनों लोगों के पास दो अलग अलग विचार हैं, तो फिर एडजस्टमेंट करें, आपके विचार से ऐसा किया जा सकता है, मेरे विचार से तो ऐसा करना चाहिए। दो में से बिल्कुल विपरीत विचार हैं तब भी एक दूसरे का विचार का सम्मान करते हुए ठीक है पहले आपके विचार के अनुसार करके देख लेते हैं, फिर देख लेंगे, फिर मेरे विचार। वो कहेगा अरे नहीं नहीं पहले आपके विचार के अनुसार करके देख लेते हैं फिर मेरे विचार। और अल्टीमेटली ऐसा करते करते शायद वे इतने ज्यादा एडजस्टमेंट पे तैयार हो जाएं कि नहीं आप ही का विचार ठीक है, वो कहे नहीं आप ही का विचार ठीक है, ये स्थिति बन जाएगी। और अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो मेरा विचार ही सर्वोत्तम है, आपका सर्वथा मिथ्या है, हो गया काम। मानसिकता पे निर्भर करता है कि हम किस तरह एडजस्ट करते हैं और किस तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दोनों चीजें जितनी जल्दी जो कर ले, कोई लोग देर से कर पाते हैं, कोई लोग जल्दी कर लेते हैं, कोई लोग मजबूरी में करते हैं, कोई लोग प्रसन्नता से करते हैं एडजस्टमेंट। अब ये अपन को देखना है कि अपन एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। यहां पर एक भी पंखा नहीं लगा पेंडाल में, मंदिर के पंखे आते ही साथ। महाराज जी लोगों का भी ऐसा ही है यार, वहां के बंद करवा दिए आते ही साथ। इनको तो सबको तपस्वी बनाने की सनक चढ़ी है, अरे अपन के बस का। हाँ ऐसा ये मानसिकता है, सोच सकते हैं आप कुछ भी सोच सकते हैं, इसमें क्या है। और ये महावीर जनालय वाले, इनको तो अरे अच्छो रहो, इनको पैसा बचा भी कि पहले ही से हती सो बच गए, इनके मिल गए इनको अपने मन के महाराज जी। हमारी मानसिकता है, उनमें भी समर्थन कर दो। हम उस समय ये नहीं सोचेंगे कि ठीक तो किया है मैं एक घंटे, क्या अपने मन को ऐसा नहीं बना सकता कि मैं गर्मी लगते हुए भी ठंड महसूस करूं, और जब कभी ठंड आए तब बिना हीटर के और मैं गर्मी महसूस करूं। क्या मैं अपने शरीर को ऐसा एडजस्ट नहीं कर सकता, क्या मैं अपने शरीर के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि मैं एक घंटे के लिए बिना पंखे के। मेरे ख्याल से इसमें अधिकांश लोग होंगे जो इतनी देर तक अपने घर में तो बिना पंखे के नहीं बैठते होंगे, लेकिन हमने एडजस्ट कर ली। अब इसमें भी मजबूरी से का ऐसा लगे ही नहीं है पंखा, जो मजबूरी है। और मजा अब प्रसन्नता कब है जबकि लगेगी है और हमने चलाया नहीं। वो कह रहा है कि प्रसन्नता से किया गया समायोजन कि ठीक है बढ़िया है, हमें एक अवसर दिया आपने, अब जरा देखना। इसका एक उदाहरण आचार्य श्री के जीवन का है। शांति कुटी में सागर में सनस्सी की बात है, गर्मी का समय है, बाहर सब लोग अपने अपने पाटे बिछे हैं उस पर सामायिक में लीन हो गए, और अचानक क्लाइमेट चेंज हुआ है और पानी तेजी से आने लगा। अब हम सब लोग तो छुल्लक हैं, आराम से पीछी लगाई भीतर बढ़नी कुटी में घुस गए, लेकिन याद आया कि अरे अपन अकेले अकेले, महाराज जी तो पूरे पानी में बैठे हुए, क्या करें, उनके ऊपर चिटाई लगाएंगे वो भी काम नहीं बनेगा, गीली हो जाएगी चिटाई, उसके बाद फिर पानी उसमें गिरने लगा, पानी बहुत तेज है, क्या करें, अब जो होगा सो देखा जाएगा, सवेरे डांट ही पड़ेगी और क्या। उठाओ, हमने कहा उठाओ, दो लोगों ने इधर से पकड़ा, दो लोगों ने उधर से पकड़ा, धीरे से पाटा भीतर रख दिया, बस आचार्य श्री वहीं पर बैठे हुए हैं और अपन लोग भी आराम से सामायिक में बैठ गए। सवेरे भक्ति के बाद मालूम स्वस्थ मानसिकता क्या है, समायोजन और एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज क्या है। आचार्य श्री ने जब गर्मी थी तब बाहर पाटा लगा था, उससे भी अपने को समायोजित कर लिया था, जब पानी गिरने लगा तब भी उससे समायोजित कर लिया था, वे स्वस्थ थे। लेकिन हम ये सोच करके कि उन्हें हम राहत दे रहे हैं, उन्हें भीतर लाए थे, पर भी सुबह क्या कहते हैं कि कर्मों की निर्जरा का एक अवसर मिला था, वह भी तुम लोगों ने मुझे नहीं लेने दिया। ये कौन सी मानसिकता, ये मानसिकता, वाह कर्मों की निजरा का एक मौका, एक घंटे तक वो जो मेरे भीतर हवा की इच्छा थी कि हवा चले, पंखे चले, अब मेरे भीतर कोई इच्छा नहीं है, मेरा तो मन लगा हुआ है सुनने में, मुझे जरूरत ही नहीं है भैया, अच्छे नहीं लगाए पंखे, हमको कर्मों की निजरा का मौका दिया, एक मानसिकता ये है, और कहां से कहां इतने आ गए, इतनी व्यवस्था तक नहीं है, पंखा लगवा देते तो कहां, एक मानसिकता ये, आप जैसा चाहे। हर मैंने एक उदाहरण दिया, हर स्थिति में जो जितने जल्दी अपने को समायोजित कर ले, जो जितने जल्दी अपने वातावरण से अपने को एडजस्ट कर ले, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, उसी की मानसिकता स्वस्थ है। ये कहलाता है पॉजिटिव अप्रोच, इसी को कहते हैं हमारा सोच का ढंग। अगर आप इसी में नेगेटिव सोचना चाहें तो नेगेटिव भी आपके सामने और पॉजिटिव भी सामने। तो दूसरी बात हमने सीख ली कि हम जल्दी से अपने को समायोजित करेंगे, जब हमें ठंड लग रही है और हीटर अवेलेबल है कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं है, लाइट चली गई है, तो पूरी म्युनिसिपैलिटी को और पूरी गवर्नमेंट को गाली देने से तो बेहतर है कि मैं अपने शरीर को ऐसा बना लूं कि मुझे बिना हीटर के काम चल जाए, बिना कूलर के काम चल जाए, मैं व्यर्थ अपने मन को गंदा क्यों करूं। बस इतना ही है, एडजस्ट कर लूं जल्दी से। लगता तो है बहुत कठिन है ये, मैं तो नहीं कर पाता, बहुत देर लगती मुझे कुछ मामलों में, कुछ मामलों में कर लेता, आप मुझे गाली दीजिएगा मैं एडजस्ट कर लूंगा, शरीर है इसलिए। इतना ही खाया जा सकता है, इतना ही सोया जा सकता है, इतना ही बोला जा सकता है, ये संतुलन है। कितना बोलना, कब बोलना, हां कितना खाना, कब खाना, चाहे जब खाना, 24 घंटे खाना, तो वो तो पशु भी थोड़ी देर को रुक जाता है, चिड़िया तो नहीं खाती रात में, हमने किसी चिड़िया को नहीं देखा, आपके घर में पली और आपको रात्रि भोजन करते देखने वाली चिड़िया भी नहीं खाती, हां देखा आपने कभी। ये बात अलग है कि आप उसके साथ धोखा करो और लाइट बहुत तेज जला दो तो वो सोचती कि दिन हो गया, दाना चुगना शुरू कर सकती है, मे बी पॉसिबल, लेकिन अगर उसे कोई धोखा नहीं है तो वो रात में नहीं खाएगी। और हम चाहे जब खा लो, क्यों, अपना सामान है, अपने अपन है, अपने ऊपर किसी का भी अपना तक अपने ऊपर वर्चस्व नहीं है, जिसका अपने पर वर्चस्व नहीं है, जिसका अपने पर अंकुश नहीं है, वो अपने मन को कभी वो स्वस्थ मन वाला है ही नहीं, सीधी सीधी बात। हमारे अपने जीवन का संतुलन बताता है कि हमारी मानसिकता स्वस्थ है या नहीं है। सब चीजों में, पहनने ओढ़ने खाने पीने चलने आने जाने बोलने सब में हमारे अगर संतुलन है तो मानसिकता स्वस्थ है, नहीं तो हम असंतुलित हो जाते हैं, और ये हमारा असंतुलन हमें और अधिक अस्वस्थ बनाता चला जाता हमारे मन को। और चौथी चीज, दायित्व का बोध, ये भी धीरे धीरे मुश्किल में पड़ गया है, मुझे ये करना चाहिए, इस तरह का मुझे दायित्व बोध हमेशा रहते ही नहीं। कैसे, मैं मां हूं तो मेरा दायित्व क्या है, इसका बोध मुझे 24 घंटे बना रहना चाहिए, सोते समय भी, खाना बनाते समय भी, और बेटे के साथ या कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करते समय भी। मैं मां हूं तो मेरा दायित्व है कि मेरे ऊपर सारे परिवार की जिम्मेदारी है, कम से कम मेरे बेटे की तो है ही, उसे पाल पोष के बहुत बड़ा करना है मुझे, इस दायित्व को मैं कभी भूलूं नहीं। हां और दुनिया के सारे कामों के बीच, और अगर मैं साधु हूं, अगर मैं कोई ऑफिसर हूं, अगर मैं और कुछ हूं, तब भी सबके साथ यही घटित होगा, सबको अपने दायित्व का बोध रहे। मैं आपके साथ धर्म सभा में बैठा हूं, आपके कल्याण का मेरे मन में भाव है, लेकिन आप मुझे तभी तक पसंद करेंगे जब तक कि मैं अपने दायित्व को पूरा निभा रहा हूं। जिस दिन मैं अपने दायित्व को पूरा नहीं करूं, जिस दिन मैं दूसरी बार खाने को उठ जाऊं, आप मुझे यहां नहीं बिठाएंगे, कम से कम वहां बिठाएंगे आप नहीं। मेरा अपना दायित्व का बोध मुझे 24 घंटे बना हुआ है कि मैं साधु हूं, आत्म साधना करना मेरा कर्तव्य है, ये परोपकार, ये मेरा सेकेंडरी, ये मेरा दूसरा दूसरे नंबर का कर्तव्य है। मेरा पहला कर्तव्य वास्तव में मैं साधु हूं वो भी नहीं है, मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि मैं मनुष्य हूं, सबके प्रति मनुष्यता की तरह व्यवहार करूं, ये मेरा पहला कर्तव्य। उसके बाद फिर मैं किसी की मां हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का पिता हूं, या कि मैं साधु हूं, ये बिल्कुल सेकेंडरी है। मैं मनुष्य हूं सबसे पहला दायित्व है, मनुष्य की हैसियत से मैं जन्मा हूं तो मनुष्यता मेरे भीतर होनी चाहिए। और फिर उस मनुष्यता में भी मैं अगर साधु हूं तो फिर मेरी उस मनुष्यता का भी डेवलपमेंट हुआ है भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, तब उस मनुष्यता भी इससे भी आगे का दायित्व है। अगर मैं मनुष्य हूं और उसमें मां है, मां हूं अगर, तो मेरे अपने फैमिली मेंबर्स उनका दायित्व है। इस तरह मैं बेटा हूं तो मेरा मां के प्रति और पिता के प्रति क्या दायित्व है, मुझे ये दायित्व का बोध हमेशा बना रहे, ये मेरी स्वस्थ मानसिकता कहलाएगी। भैया तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए, कहा मैं करते रहे हमारे बस को नहीं, तुम्हारे सब करो, हम ही खिलाने हैं सब, ऐसा बहुत जल्दी कह देते हैं। कोई अगर हमें हमारे दायित्व की याद दिलाता है कि भैया मनुष्य की तरह जन्म लिया है, अपना आत्म कल्याण करने का दायित्व भी है, रखो अपने पास अपना विचार। आज अगर किसी से ये कहा जाए कि अपने आत्म कल्याण का दायित्व भी है तो वो कहता है वो तो मुझे मालूम है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, और बाहर में ऐसे काम कर रहा है जिससे कि प्रकट हो रहा है कि अपने आत्म दायित्व को भूल करके ही ये काम किए जा सकते हैं, तो क्या अकेले वाणी से कहने पर मालूम पड़ जाएगा कि हां मुझे अपने आत्म दायित्व का बोध है। आत्मानुभूति मेरा पहला कर्तव्य है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। और क्या वास्तव मेरे जीवन में आत्मानुभूति, मैं अपने उस पहले दायित्व को ध्यान में रख रहा हूं या कि बाकी सब चीजों को ध्यान में रख रहा हूं, ये कसौटी है। मन्नू भंडारी ने एक नॉवल लिखा, कोर्स में चलता है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप उपन्यास पढ़ना शुरू कर दें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिनने पढ़ा है उसमें से क्या सीखा है। मैंने वो पूरा का पूरा पढ़ा और उसमें से एक लाइन, मां अपने बेटे के सामने हमेशा मां रहे, बस इतना ही। जैसे कि मैं आपके सामने साधु का जो दायित्व है वो प्रकट करता रहूं तो ही ठीक है, ऐसे ही मां भी अपने बेटे के सामने, मां अपने बेटे के पिता की जीवन साथी है लेकिन बेटे के सामने वो अपने किसी की जीवन साथी नहीं है, वो सिर्फ अपने बेटे की मां है, ये ध्यान रखना, बहुत बड़ा दायित्व बोध है ये। जब बेटा, मैंने पहले लोगों को देखा कि वे अपने माता पिता के सामने अपने बेटे को गोद में नहीं उठाते थे, बताइए आप, बड़ा। मैं अपने माता पिता के सामने मैं बेटा हूं और माता पिता अपने बेटे के सामने सिर्फ माता पिता है, बहुत मुश्किल है। विद्यार्थी आज या कि एक कोई शिष्य किसी गुरु का या कि और भी सारे संबंध, उन सब में देखें अपन कि क्या दायित्व बोध होता है अपन को। एक उदाहरण से अपन समझ लें, बात जल्दी समझ में आ जाएगी। एक लकड़हारा था, लकड़ी काट करके जीवन चलाता था, और एक बार ऐसा हुआ कि उस जिस देश में वो रहता था उसका राजा मर गया, और इतने ही नहीं, रानी साहबा को स्वप्न आया कि वो राजा बनेगा, एक तोता उड़ाओ जिसके कंधे बैठ जाए वो ही राजा बना देना। तोता उड़ाया गया, उड़ता उड़ता जंगल में पहुंच गया, लकड़हारे के कंधे पर बैठ गया, अब बनाओ राजा, बिल्कुल राजा बना दिया। लकड़हारा राजा बनकर के गद्दी बैठा हुआ है, बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल अनभिज्ञ है राजकाज से, लेकिन गद्दी बिठा दिया गया है। और जैसे ही पूरी कार्यवाही समाप्त होती है, राजा कुर्सी से उठ करके नीचे उतरने लगता है तो ऐसे हाथ आगे बढ़ाता है कि मुझे संभाल लो, मंत्री दोनों तरफ से आकर के और दोनों साइड उनके कंधों पर हाथ रख करके वो नीचे उतरता है। मंत्री दोनों एक दूसरे की तरफ देखे मुस्कुराते हैं कि देखो, आप समझ गए होंगे। और जब उनके मन में ये भाव आया, उसके पहले लकड़हारे ने कह दिया कि मंत्री जी क्या सोच रहे हैं आप, यही सोच रहे हैं कि कल तक ये लकड़ी काटता था और वो लकड़ी का बोझा अपने सिर पे उठा लेता था, इतनी ताकत थी, और आज इस गद्दी पे बैठते ही साथ और अपना बोझ भी नहीं उठा पा रहा, नीचे उतरने में दो दो मंत्रियों के कंधे पर हाथ रख रहा है, ये तो बिल्कुल बदल गया, यही सोच रहे हैं ना आप? मंत्रियों ने कहा कि हां यही सोच रहे हैं। मंत्री जी, मैं राजकाज में अनभिज्ञ, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये राज और मैं स्वयं आप दोनों के कंधों पर ही है ये मेरा सारा का सारा राज, क्योंकि मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूं, इसलिए मुझे आपके अभी सहारे की जरूरत है। ये दायित्व बोध कहां से आ गया? और मैं राजा हूं, इसलिए दूसरी चीज भी मेरे अंदर है कि राजा को तो ऐसे ही पेश आना चाहिए अपने आसपास के लोगों से। राजा बलवान होता है लेकिन अंग रक्षक उसके इंद्र इतना बलवान है कि डमरू के समान पूरे तीनों लोकों को पलटने की सामर्थ्य रखता, फिर भी उसके बॉडीगार्ड, फिर भी दो अंग रक्षक, जब खड़े हो तो उसको खड़े करवाने के लिए चाहिए, जब आगे बढ़े तो उसको संभालने के लिए चाहिए। ये क्या है? ये उस इंद्रत्व का बोध है, ये उस राजापने के दायित्व का बोध है, इसको कहते हैं दायित्व बोध। क्या ऐसा हमारे भीतर दायित्व बोध होता है कि मैं मनुष्य हूं? बताइए, मेरे द्वारा किसी को क्षति ना पहुंचे, मैं चलता हूं क्या इस तरह से, मैं उठता बैठता हूं इस तरह से, मैं बात करता हूं इस तरह से? बात कठिन है, इस दायित्व बोध का हमेशा बने रहना। और पांचवें नंबर कर्तव्य बोध, दोनों में बहुत फर्क है, दायित्व और कर्तव्य में बहुत फर्क है। दायित्व बोध निरंतर बना रहता है लेकिन उस दायित्व बोध की पूर्ति के लिए जिस समय जो करना आवश्यक है वो किया जाए, उसको कहते कर्तव्य। जैसे मैं विद्यार्थी हूं, मेरा दायित्व है कि मैं अध्ययन करूं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जब अध्ययन कराया जाता है उस समय गुरुजी के चरणों में जाके बैठूं। मैं विद्यार्थी हूं, मेरा दायित्व है विद्या पढ़ने का, लेकिन मैं जाऊंगा स्कूल 12 बजे खाना वाना खा करके, स्कूल तो 11 बजे से लगती, आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, 11 बजे आपको स्कूल जाना चाहिए। भले ही आपको दायित्व है, पढ़ने का दायित्व बोध तो है, लेकिन आपको कर्तव्य बोध नहीं है। हां, ये कहलाता कर्तव्य बोध, किस समय क्या करना है मुझे, ये हमेशा मुझे बना रहे। स्वस्थ मानसिकता जिसकी है उसको ये सारी चीजें बहुत आसान है भैया, और नहीं तो सिखाए पढ़ाए से ये चीजें आती नहीं है। हमारे अपने अंतरंग में हमें ये अनुभूति होती रहे और हम उस अनुभूति के अनुरूप मेरा किस समय क्या करने योग्य कार्य है वो करूं, वही मेरा कर्तव्य है। दायित्व के साथ साथ कर्तव्य, विद्यार्थी हूं, पढ़ना मेरा दायित्व है, लेकिन जिस समय स्कूल लगती है उस समय मुझे पहुंचना, ये मेरा दायित्व, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे खाना खाना है, इसका तो मुझे बोध रहता है, लेकिन माँ कितने बजे मुझे खाने पर बुलाएगी उतने बजे मुझे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे खाना तो है, खाने का बोध तो बना है, लेकिन मैं 2 बजे खाऊंगा। अरे अब माँ के लिए तो 10 बजे बना के रखा है, उसने 2 बजे कहां से खाएंगे? शाम को खाना चाहिए, इस तरह का कर्तव्य बोध नहीं है। खाना चाहिए ये तो है बोध, लेकिन किस समय, कब, कौन सी चीज, ये मेरा अपना कर्तव्य है। मैं एक और वर्णी जी के जीवन की घटना सुनाऊं और बस अपन आज के लिए इतना ही रख लें, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे और अपने जीवन में इसमें से थोड़ा बहुत भी, पूरा तो ना आ पाएगा मेरे जीवन में, पूरा नहीं जितना मैंने कहा, बताइए आपके में, जबकि मुझे तो ये मालूम है, कई लोगों को तो ये इतनी बातें जो मैंने कहीं को मालूम ही नहीं होती होंगी, तो कई लोगों को लग रहा होगा अच्छा बता दिया महाराज ने, हम ऐसा तो करते ही नहीं है, अपन करेंगे, लेकिन मुझे तो मालूम है, मालूम होते हुए भी मैं पूरा नहीं कर पाता हूं, ध्यान रखना। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये इतना आसान नहीं है, इसलिए कह रहा हूं बहुत कठिन है, पर अपन को करना, बस अपने अंदर एक ही चीज है कि अपने को करना है। नहीं है ये फील होना, ये भी तो बहुत छोटी चीज नहीं है, नहीं तो अपन तो अपने को बिल्कुल परफेक्ट मानने वाले लोग हैं, 100% मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, ऐसे किसी मुगालते में तो अपन नहीं रहते, ना हम किसी को इस तरह का मुगालता पालने की सलाह देते हैं। अपनी मौजूदा स्थिति क्या है उसका हमेशा आकलन करते रहना चाहिए और हमेशा उससे आगे बढ़ने के लिए जहां से जो मिल जाए उसको लालायित होकर के और स्वीकार करके, और अगर मालूम पड़ जाए तब भी रोज रोज कि हाँ मुझे इसमें और इजाफा करना है, इसमें मुझे और बढ़ाना है, बस इतना ही पर्याप्त। एकदम तो नहीं आएगा, पर थोड़ी थोड़ी सी बातें इसमें से जरूर अपन स्वीकार कर ग्रहण करेंगे। वर्णी जी के जीवन की एक और मैं आपको घटना सुनाऊं। वो पढ़ाते थे, जब वो महाराज नहीं बने थे, चुड़लक जी नहीं बने थे, तब उसके पहले की बात है। तो वो पढ़ाते भी थे और पढ़ते भी थे, हाँ दोनों चीजें थी। तो उनके गुरुजी थे, झा साहब थे, कौन थे अब पूरा नाम हमें याद नहीं, नाम भूल जाते हम, गांव भूल जाते हम। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोगों के नाम और हम यहाँ शिवपुरी भूल जाएंगे, आप क्या समझ रहे थे, इतना तो याद रहता है हमको, यहाँ जो अच्छी अच्छी बातें हुई वे भी याद रहेंगी, लेकिन अब बहुत पुरानी पुरानी बातें कहाँ एकदम याद रहती। जो भी नाम रहा हो आप सुधार लेना उसको, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर गलती बोल जाऊँ तो। वो उनके साथ में शाम को सब लोग जाते थे, पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई, अब सब बच्चे स्कूल के, जैसे यहाँ पर आए हैं बच्चे स्कूल के, ब्रह्मचारी जी जैसे लेकर के आए सब बच्चों को, ऐसे ही उनके गुरु जी उन सबको लेकर के जाते थे शाम को, वहीं थोड़ा टहलेंगे और वहीं पर शाम को कुल्ला उल्ला करके थोड़ा फ्रेश होके और वापस आ जाते। कुआं पड़ता था वहां पर बीच में, तो सबने उस दिन पहुंचे तो कुएं पर सबने बढ़िया से जो भी फ्रेश होना था वो हुए और प्रार्थना वार्थना करना थी वो भी वहीं पर करी, वापस लौटने लगे तो उतने में देखते हैं सामने से कि एक बूढ़ी अम्मा अपने सिर पर गट्ठा रखे हुए लकड़ी का चली आ रही है, और बस देखते देखते और वो एकदम चीख पड़ी और गट्ठा नीचे गिर गया, वो खुद भी बैठ गई और पैर पकड़ लिया, अरे बहुत जोर से लग गया, क्या लगा अम्मा, सबने उसको घेर लिया, अम्मा को कांटा लग गया, लाओ हम निकाल दे, अरे नहीं भैया तुम्हारा धर्म बिगड़ जाए, हम कौन ऊंची जात के हैं। हाँ उस अम्मा ने कहा कि नहीं भैया हम इन्हें छीलियो, तुम पंडित आदमी तुम्हारे सब देखो सफेद कपड़ा पहने तिलक लगाए हों और चोटी रखे हों, आप पंडित लोग हम इन्हें छूना, हम तो बहुत उस छूने लायक नहीं है, हम निकाल लेंगे। उसने खींचा वो कांटा, बहुत आगे भीतर घुस गया था, अब देखो अपने हाथ से अपनों कांटा निकाल वो बहुत कठिन है, दर्द होता है, डॉक्टर खींच दे पकड़ करके, नहीं निकला और खून तो निकलना शुरू हो गया। वर्णी जी से रहा नहीं गया, कहते अम्मा हम तो निकालेंगे, आप हमें मना नहीं करो, अरे नहीं भैया तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहले ऐसा बहुत चलता था, बड़ा लोगों के अंदर इस तरह की माने आदमी आदमी के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है ये विचार करने की चीज है। हाँ पशुवत व्यवहार कर सकता है, एक समय से हम उस समय से भी गुजरे हैं और आज भी देख रहे हैं अपन वही सारी चीजें। तो वर्णी जी ने कहा अच्छा हमसे नहीं छुआओ, लेकिन भैया संसी तो ले आओ, संसी से निकाल देंगे। संसी समझते हैं वो निकालने की, चमेटी वगैरह समझ लो आप जो भी है। तो वो लाए वो और उससे पकड़ करके उसको निकाला, जैसे ही निकाला तो खून की धारा बह गई, अब नहीं रहा गया वर्णी जी से, आंख भीग गई उनकी और अपना जो दुपट्टा ओढ़े थे सो उसको फाड़ा और कहते कि अब तो मना करो चाहे कुछ भी करो, दबा करके हाथ से पट्टी बांध दी। और इतने ही नहीं अब उस अम्मा की कोई बात नहीं सुनेंगे, अम्मा सिर्फ ये बताओ कहां रहती हो, भैया हमारा घर तो बहुत दूर है, अम्मा हम चलेंगे तुम आगे आगे चलो, हमारा हाथ पकड़ करके और सिर पे बोझा रख लिया अपने हाथ से उठा करके वो गट्ठा लकड़ी का और चले जा रहे हैं। और पहुंच गए उस बस्ती में, वहां के सब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए कि कौन व्यक्ति इस पंडित को किस सिर पे बोझा रखवा कर कि ये बूढ़ी अम्मा लेके आई, भाई हुआ कैसे ये, सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, पैर में चोट लग गई थी, ये भैया माने ही नहीं, पंडित जी जी माने ही नहीं और हम तो बहुत इनको मना कर रहे थे। इनने अपना धर्म बिगाड़ दिया, इनके लोग इनको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे क्या पता, मगर ये माने नहीं और हमारे साथ में। बस बच्चे दो मिनट और, सब लोग वहीं पर बैठ जाएं, है ना, सिर्फ दो मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर दे रहा हूं। बहुत अच्छे बच्चे, पूरे उस पर बैठ जाओ सब लोग बढ़िया से। तो अपन फिर से वापस आ जाएं वर्णी जी के साथ कि कैसी मानसिकता है और अपन की कैसी है, कैसे अपन अपने दायित्व का बोध और कर्तव्य का पालन करते हैं। उस समय दायित्व क्या था और उस समय कर्तव्य क्या था अपन देख रहे हैं, जबकि किसी को चोट पहुंच गई है। उस समय मैं पंडित हूं ये बिल्कुल सेकेंडरी बात है, उस समय मैं मनुष्य हूं ये बिल्कुल पहली बात है। हां मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, और उस समय दया करुणा मैत्री सब मेरे अंदर सब चीजों का दायित्व बोध है, लेकिन उस दया करुणा और मैत्री का मैनिफेस्टेशन, उसका विस्तार, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच मेरा कर्तव्य है। मेरे अंदर दया तो है, लेकिन अब उस दया को मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं तब तो वो कहलाएगा कि मेरे भीतर दायित्व बोध है। और वर्णी जी ने वही किया, और सब लोगों ने जब ये बात सुनी तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई कोई तो दंडवत हो गए। हमने सुना था कि देवता होते हैं, आज हमने अपनी आंखों से जो है देवता के दर्शन किए। और ऐसा सबने जहां कहा तो वन्नी जी सिर नीचे झुकाए हैं, आंखों से आंसू की धारा बह रही, ए भैया हम देवता नहीं, हम तो आपके जैसे मनुष्य हैं, हमने तो बहुत मुश्किल से जो जैन धर्म पाओ उसमें दया धर्म है, सो हमने तो अपने दायित्व और कर्तव्य का पालन किया है, हम फरिश्ता और देवता नहीं। वन्नी जी हाथ जोड़ करके, उन सबके हाथ जोड़ करके ये कह रहे कि हमने तो बहुत मुश्किल से जैन धर्म पाया और उसमें जो दया है वो हमारा दायित्व है, वो हमारा कर्तव्य, हमने तो वो पालन किया, हम कहां से देवता बन गए, अभी तो हम मनुष्य नहीं। भैया हमें आपसे भी और हम सबसे, हमें अपने आप से भी हमें यही अपेक्षा है कि हमें अगर दायित्व का बोध नहीं हो तो हमें दायित्व का बोध हो जाए, और अगर दायित्व का बोध है तो हम अपने कर्तव्य को ठीक ठीक निर्वाह कर सकें तो ही हमारी मानसिकता स्वस्थ कहलाएगी। नहीं तो भैया ऐसी बातें तो सबके पास में है, लेकिन इन बातों में से और हमारे अपने जीवन में जितनी उतर जावे बेई सच्ची हैं, बेई हमारे काम की हैं। ये सारी बातें जो हमें आचार्य भगवंतों ने हम पे उपकार करके कृपा करके हमें दी हैं और हम अपने जीवन में उनको उतार सकें और अपने मन को बहुत स्वस्थ बना सकें, इसी भावना के साथ अपन सब मिलकर के नमोकार करेंगे।
Chattai Mangalam.
मंगलम साहू मंगलम केवली शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सागर मुनि दो मिनट शायद कुछ बच्चे आए हैं उनसे कुछ अपन ले लें और कोटा वालों को भी समय देना था लेकिन वो भी नहीं हो पाया। दो मिनट यदि वो चाहें तो वो ले लें और दो अपन थोड़ा देर और बैठ लें। ये बच्चे कहां से आ गए?
हार्डी कॉन्वेंट स्कूल अशोक नगर हर सेकेंडरी स्कूल से ये बच्चे पधारे हैं। आप सभी का स्वागत।
प्रथम नास देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा पर भास देखो बालो शिव कानी है ज्ञान देखो बंद वेद बान देखो सपर पिछान देखो परम प्रमाणी है जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो सुख विस्तार देखो ये भी जनवाणी रवानी के ज्ञान ते सुजनो कालोक सुवानी मस्तक नमो सदा देते हो ए दिन वाणी भारती तो जपो दिन रहें जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन।
देवानी माता की परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की